کیا تھا ان کے پاس یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ روپ روپ کا ارتھ سوندرج راجا بہت سندر تھی, اوبارج دانشیلتا تھی, کھلے ہاتھ سب کو دان دیتے تھے, کوئی بھی مانگنے آتا تھا تو اس کو اس کی اچھا کے انوسار دیتے تھے, اس کو اوبارج کہ چاہے پریوار ہو منتری ہوں پروہت ہوں سب کو پرسن رکھتے تھے, جنتا کو بالکل خوش رکھتے تھے, دیتے تھے ادار کا اوبارج. اور گیا ہے یوک تھے, گیا کار سے کہ جوانی بالکل جوانی, جنم اور ونش بھی بہت اونچا ملا تھا, ماتا پتا کے بہت بڑے تھے, شدھ پریوار میں جنم ہوا تھا, اچھ ونش میں ایشورج اور راجا تو تھے, ایشور کائی ارتھات کنٹرولنگ پاور تب یہی سب سے بڑا سارم سمراٹ تھے, تو ایشورج تھے اور شریاگ بھی ودیا ایشور شریاگ بھی ودیا بھی بہت پڑھے تھے, بہت پڑھائی لکھائی کی ہے کئی سمے کے انوسار ٹاپ کلاس کے, اور سریاد بھی دھن بھی بھرا پڑا تھا, آدی سے اور سب بھی سب کچھ تھا, سب سے سمپن تھے پورا تھے, گڑ سر گئے جتنے بھی منشیہ کی کامنا ہوتی ہم کو یہ ملے ہم کو یہ ملے سب کچھ ان کو ملا ہوا تھا, لیکن ایک بات کے کارن ان کو بہت دکھ ہوتا تھا, بندھا پتے ابھی یہ بندھا استریوں کے پتی ہو گئے پتر نہیں ہوا اس لیے بہت دکھی رہتے تھے. جب کوئی ویکتی کسی بھی ایک کمی سے دکھی ہوتا ہے تو اس کے پاس ساری وستیں مل کر کہیں سکھ نہیں دے سکتی, یہ دیکھا گیا سنسار میں. اچ کل ہے دھن ہے پود ہے روپ ہے ادارتا ہے ودیا ہے سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی اپنے کو مانتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ انہیں سنتان کی اچھا تھی پتر کی اچھا تھی اور پتر ہوا نہیں, تو بہت چنتا میں رہتے تھے دکھ میں رہتے تھے. دکھایا گیا ہے یہاں پر اس پرسنگ میں کہ سنسار میں کبھی بھی ایسا سمے نہیں آئے گا کسی ویکتی کے لیے کہ اسے سب کچھ پراپت ہو جائے, جہاں بھی اپنے من میں ابھاؤ کی انوبھوتی کرے گا تو دوسرے گن اس کو سکھی نہیں کر پائیں گے. ایک چھوٹی سی کتھا ہے گاؤں کی کتھا ہے چھوٹی سی, ایک بار برسہ ہو رہی تھی اور ہمارے گھر پر ایک ویکتی آیا تو ہم لوگ اپنی شکتی کے انوسار اس کو کھلائے پلائے, برسہ ہو رہی تھی تو اصل میں وہ اتھی تھا دوسرے گھر کا, لیکن کیرتن میں آ گیا تھا دیر ہو گئی تو پھر ہم لوگوں نے پرساد پڑھایا, کہا کہ آپ آرام کیجیے وہیں, تو پرساد کھائے کر کے اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم کو ایک بوڑھی دیجیے, ہم لوگ چکت ہو گئے, ہم لوگ تو بوڑھی چھڑاتے ہیں, بوڑھی کہاں کہاں سے دے, اور وہی برسا ہو رہی تھی گاؤں کی دکان میں جانا اسمبھو تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل مل نہیں پائے گی آپ آرام کیجیے, تو لگے کہنا کہ تم لوگ کیوں ہم کو کھلائے بیکار ہے سب کھلانا پلانا, بوڑھی کتنا جی نہیں سکتا, ہم کو کھانے کے بعد ایک بوڑھی چاہیے ہو کہیں سے بھی منگاؤ, اب کیا ویسے تو ہم لوگ نہیں منگا سکے, برسا میں ڈھونڈتے ہوئے گائے کے دکان میں گائے بوڑھی کر, اب وہاں سونے کا پربندھ تھا بھوجن کا پربندھ تھا, لیکن بوڑھی کے بنا سارا جگت شونیہ لگ رہا تھا, ان کو کوئی سکھ نہیں, جب من میں کسی چیز کا ابھاؤ بس جاتا ہے تو دنیا بالکل خالی دکھتی ہے اس کے بنا. ہمارے چترکیتو کے جیون میں کوئی سکھ نہیں تھا, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہاں پتر پتر نہیں ہوا پتر نہیں ہوا, اس چنتا میں رہتے تھے. تمہارے پرچھت پرشن کرتے ہیں, और इतनी सुंदर स्त्रियां थी, इतना राज्य था, सब कुछ था, उनको सुख नहीं मिला। तब सुखदेव जी कहते नतस्य संपद सर्व महिष्य वामलोचन सार्वभौमस्य भूष्टियम अभयम प्रीति है तव। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट महाराज चित्रकेतु को ये सब प्रसन्नता नहीं दे सके। क्या क्या संपद संपत्ति धन आदि यौवन आदि अच्छा महिष्य सारी संपत्तियां और सभी स्त्रियां जो वाम लोचन सुंदर नेत्रों वाली थी उसका अर्थ यह है कि परम सुंदरी थी। जो भी स्त्री थी वह परम सुंदरी थी, लेकिन उन स्त्रियों ने उनके मन में प्रीति उत्पन्न नहीं किया, अर्थात स्त्रियों से सुख नहीं मांग सके, न धन से न सौंदर्य से न उदारता से न घुस चयन चयन भू, और यह पृथ्वी उनको सुख नहीं दे पाई। पृथ्वी के सारे उत्पादनों को वे ले सकते थे, वाहन भोजन सब कुछ, लेकिन सुखी नहीं है। यदि मन में अभाव नहीं है तो आदमी भीख मांग करके भी सुखी दिखता है, तो संसार में देखा गया है। और मन किसी वस्तु की लालसा से जल रहा है तो व्यक्ति सुख से सोता नहीं। मन संतुष्ट है तो रोग कर भी आदमी सो जाता है। देखते हैं कितने लोग रोग पर बंबई में सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एसी रूम में भी जलते रहते होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी। आए कैसे होगा, वो अभी हमारे मन के विपरीत हो गया, यह हो गया वह हो गया, ये सोने का टैबलेट खाते हैं। कुछ दिन के बाद टैबलेट की शक्ति भी फेल हो जाती है, अभी काम नहीं करती। तो एक कवि ने कहा कि चाह गई चिंता घटी मनिया दे प्रवाह जाके कछु न चाहिए सो साहन पतिशा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाहों का बादशाह है, और जिसको कुछ चाहिए और वो वस्तु मिल नहीं रही है तो वो कंगाल को रोता रहेगा, हाय हाय हमको ये नहीं मिला वो नहीं, जो मिला हुआ है उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। सारा भरा हुआ था चित्रकेतु के पास, लेकिन न प्रीति है तब अभवन, कोई भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, न स्त्रियां न धन संपत्ति ऐश्वर्य कुछ भी नहीं। इस तरह से राजा बहुत चिंता में रहते थे, शोक में डूबे रहते थे। यहां पर एक संदेश दिया जा रहा है कि यह मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास धन हो जाएगा, पद हो जाएगा, या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, रूप ठीक हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। ये सब तो चित्रकेतु को थे और पूर्ण मात्रा में, वे तो सार्वभौम थे। यहां पर तो कोई सार्वभौम भी नहीं हो सकता है ना। बम्बई में एक किसी कोने में अपार्टमेंट का कोई एक फ्लैट है तो उसी में आदमी खुश हो जाता है। तो ये अच्छा है, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो संपूर्ण भूमि के अधिकारी थे, कहीं भी किस सोने के भवन में नहीं रह सकते थे। वाहन आदि के लिए कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ स्त्रियां तो एक करोड़ थी, पर फिर भी सुखी नहीं, क्योंकि एक बात का अभाव उनके मन में बस गया था, उन्हें दुख दे रहा था। इससे शिक्षा मिलती है कि अपने मन में संतोष करना चाहिए, भगवान जैसे दिए हैं उसी में संतोष करना चाहिए, नहीं अगर और का लोभ होगा तो लोभ जलाएगा। इच्छा कामा ये शत्रुभ है सरजोग समझो, भगवान एक जगह कहते हैं महासमय महापापना विध्वन निर्भय, जीव का यह वायरी है काम, काम का अर्थ विषयाभिलाष, हमको यह चाहिए हमको यह चाहिए हमको यह चाहिए, चाहने से मिलेगी नहीं वस्तु, चाहने से नहीं मिलती है, जो ललाट में लिखा गया है उसके अनुसार सब मिलता है, चाहने से क्या होगा। यदि हमारे पास पैसा नहीं है और हम वहीं पर चाहे और ध्यान करें कि हम राजधानी से वृंदावन जाएंगे तो चाहने से क्या होगा। इच्छा से जलन होती है, उसमें इच्छा त्यागना चाहिए मनुष्य को, जो भगवान दिए हैं उसमें संतोष करो। तो राजा को संतोष नहीं था, वो संतान के लिए तड़प रहे थे, बहुत दुखी थे। अब सुनिए घटना, एक बार उनके घर पर अंगिरा जी आए। तस्थिर कदात भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरण एकान उपा गमत जदृक्षया उपागात जदृक्षया। एक बार भगवान अंगिरा मतलब समर्थ थे मिली अंगिरा जो नारद जी के भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ये लोगों की स्थिति को देखते हुए घूमते घामते राजा चक्रकेतु के पास पहुंच गए। यह पूछा गया क्यों पहुंच गए, एक ऋषि हैं त्याग से रहना चाहिए तो राजा के पास क्यों चले गए, हो न हो इनको कोई कामना होगी। सुनने वाला आदमी यही सोचेगा तो राजा के पास पहुंचे तो कोई न कोई कामना तो होगी ही, पैसे के लिए चाहे किसी चीज के लिए पहुंचे होंगे। तब सुखदेव जी कहते हैं ना जदृच्छया, जदृच्छया का अर्थ है अपने आप, किसी प्लान से नहीं, किसी योजना से नहीं, चले घूमते हुए चले। गरीबों के पास भी जाते थे तो राजा के पास भी जाने की इच्छा हो गई, और अंग्रेजों को इस बात का पता था कि राजा बहुत दुखी रहता है संतान के लिए, तो वास्तव में गए थे उद्धार करने के लिए। राजा चित्रकेतु के राज्य में छोटी छोटी जनता पूर्ण सुखी थी, राजा दुखी था, जिसको सब कुछ था वो दुखी था। तो वे गए दुख सुन लिए थे, अतः उसका उद्धार करने की इच्छा से अंगिरा जी गए। इस श्लोक में श्री सुखदेव के समय अंगिरा जी को भगवान कह रहे हैं। यहां भगवान शब्द का अर्थ है चित्रकेतु का दुख दूर करने में समर्थ, या उनकी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ, भगवत भक्ति से पूर्ण अंगिरा जी। तो गए लोकन अनुचरण, तो लोगों के पास जाते ही रहते थे, जाते ही रहते थे, तो राजा चित्रकेतु के पास भी गए। तम पूजयित्वा विधि प्रतिष्ठानार्हणा विधि कृता तिथमुपासीदत् सुखासीनम् समाहितः। तो राजा ने जब देखा अंगिरा जी को तो अपने आसन से तुरंत खड़े हो गए। ये है सम्मान, अति संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे चित्रकेतु महाराज, लेकिन ब्राह्मणों का साधुओं का वे बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गए अपने आसन से और कुछ दिन जा करके उनकी अगवानी की अंगिरा जी को ला करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाए। आसन पर बैठा करके स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए। इस तरह का काम इस समय के सांसद भी नहीं करेंगे कि साधु के चरण धोते तो कुछ बुद्धि होती, तो ये सब कल्चर सब विदा होता जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट एक साधु के एक ब्राह्मण के चरण को धो रहा, चरण धोए और नाना प्रकार से आतिथ्य किए। जब सुखपूर्वक बैठ गए आसन पर अंगिरा जी आनंद से बैठे थे, तो राजा चित्रकेतु पृथ्वी पर बैठ कर गए उनके सामने बिना आसन के, कुशन भी नहीं डाला गया, ऐसे ही फर्श पर बैठ गए। इस तरह से उन्होंने स्वागत किया। उनके जीवन का जो भाग्योदय है, किस तरह से कृष्ण भावना भावित हुए, इसकी शुरुआत हो रही है यहां पर। साधु का इनके घर में आगमन इनके सौभाग्य का उदय करा रहा है। तो महर्षि स्तन उपासीनम प्रश्रयाय मतम छित, छिति पर बैठे थे। यहां छिति शब्द इसलिए दिया गया है कि जमीन पर कोई बिछौना नहीं था, कोई कारपेट वगैरह नहीं बिछा। इतना दीन भाव से राजा बैठ गया उस ऋषि के सामने। महर्षि तम उपासन प्रश्रयाय नतम छित प्रतिपूज्य महाराजा समाभाषे बना दिए। तो जिस प्रकार चित्रकेतु ने सम्मान किया था महर्षि अंगिरा का, उसी तरह से अंगिरा जी राजा चित्रकेतु का भी बड़ा आदर किए, बड़े प्रेम से सम्मान देते हुए उनसे इस प्रकार पूछे। राजा है इतना बड़ा और इतनी नम्रता से जमीन पर बैठा है, तो स्वाभाविक उनकी प्रशंसा किए गए, अंगिरा जी प्रशंसा किए। इसको प्रतिपूजन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को सीखना चाहिए, कोई मान दे रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो प्रणाम करने वाले, मान देने वाले को भी मान देना चाहिए। कम से कम ध्यान तो दे कि कौन प्रणाम कर रहा है या किस तरह से नम्रता से कोई व्यवहार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो उसे प्रेम करना चाहिए। क्या लिखा गया है कि महर्षि उनसे इस प्रकार बोले आदर के साथ, बड़े नम्र भाव से जमीन पर बैठे थे हाथ जोड़ करके, तो उनसे अंगिरा जी पूछे, अंगिरा याच अतीते नामयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथात्मनः। राजन, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मन में बहुत बड़ी चिंता थी। इन सबसे पहले अंगिरा जी यह पूछ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? अनामयम अनारोग्यम, आपको कोई रोग तो नहीं है ना? दो प्रकार का रोग होता है, एक आधी एक व्याधि। तो आधी मानसिक चिंता को कहते हैं, और वही मानसिक चिंता जब विशेष रूप से शरीर में प्रकट होती है तो उसको व्याधि कहते हैं। व्याधि व्याधि आधी व्याधि, तो फिर है फुंसी बुखार सर्दी, ये सब व्याधि है। और मन में चिंता होना, ग्लानि होना, क्रोध शोक मोह राग, ये सब व्याधि, ये सब आदि मानसिक चिंता। वास्तव में चित्रकेतु महाराज स्वस्थ नहीं थे। स्वस्थ का अर्थ होता स्व में अस्थित, अपने स्वरूप में जो व्यक्ति है उसको स्वस्थ कहते हैं। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, वाणी कीर्तन में लगा है, कान श्रवण में, हाथ सेवा में, आत्मा से व्यक्ति मान रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो भगवान की सेवा में जो लगा हुआ वो है स्वस्थ। स्वस्मिन स्थित स्वस्थ, जो अपने में अस्थित, और जो अपने में नहीं है, माया में अस्थित है, वो अस्वस्थ कह रहे हैं। तो वास्तविक कर थे, लेकिन यहां ये पूछ रहे थे वास्तव में शरीर और मन के विषय में कि आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, और स्वस्थी आप खुश हैं ना, आपका कल्याण है ना। कल्याण का अर्थ यह होता है कि आपका काम धंधा सब ठीक से हो रहा है ना, परिवार में कोई मरा नहीं ना, या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, सब काम धंधा ठीक से चल रहा है ना, शरीर ठीक है, काम धंधा ठीक से चल रहा है, और प्रकृति नाम तथा मना, आपके प्रकृतियों का सब ठीक है ना। राजा है तो राजा से राजा जैसा समाचार पूछा जाएगा ना, तो राजा की सात प्रकृतियां होती हैं। एक तो पुरोहित, राजा के पास मंत्रणा देने वाला वेद शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति जरूर होना चाहिए, और एक नहीं होते, कई होते। राजा ब्राह्मणों से घिरा रहता है, क्योंकि वही उसको वास्तविक बुद्धि देते हैं, डायरेक्ट शासन में भाग नहीं लेते हैं। ब्राह्मण लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, लेकिन वे मैनेजरों को देते हैं सलाह शास्त्र द्वारा, तो इस स्थिति में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो पुरोहित जो है वो एक प्रकृति माना जाता है, और दूसरे होते हैं अमात्य। अमात्य का अर्थ है कि वो कार्य में सहायता करते हैं राजा की। तो मंत्री कहा जाता है ब्राह्मण को, पुरोहित को, वो विचार देते हैं, लेकिन क्रिया करते समय जो सहायता करता है, ये काम ऐसे होना चाहिए इस तरह से, तो उसको अमात्य कहते हैं। ये दो हुए, मंत्री अर्थात पुरोहित और अमात्य। और तीसरा है दुर्ग, उसके पास किला होना चाहिए, राजा के पास रहता है राजभवन आदि, कि विपत्ति में वह शत्रुओं के आक्रमण से बच सके, सुरक्षित रहे, जिसमें उसका सारा राज परिवार रहे और सेना भी रहे। तो दुर्ग और कोष, उसके पास नगद पैसा होना चाहिए राजा के पास, तभी राज ठीक से चलेगा। इसका अर्थ है कि उसके कोष में पर्याप्त सोना हो, हीरा हो और भी पैसा जो हो होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सेना, सेनापति, और इसके अलावा मित्र। राजा का अपना मित्र होना बहुत जरूरी है, अपने सहायक जो उसका साथ देते हैं। तो इस प्रकार से कितना ने गिनाया है, 6 गिनाया, और एक है दंड। दंड का अर्थ होता है उसके पास, उसके बिहार में अपराध के अनुसार दंड देने वाला कोई जज होना चाहिए। तो इस तरह से ये 7 राजा की प्रकृतियां होती हैं। तो महाराज चित्रकेतु से अंग्रेज पूछ रहे हैं कि आपकी प्रकृति सब ठीक है ना, आपकी सेना ठीक है, कोष ठीक है, मंत्री और अमात सचिव आदि सब ठीक है ना, और आप स्वस्थ हैं, सब काम ठीक से चल रहा है, राज्य शासन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जैसे जीव 7 प्रकृतियों के द्वारा गुप्त रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी तरह से राजा भी अपने 7 प्रकृतियों द्वारा सुरक्षित रहता है। और एक बात और महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आत्मानं प्रकृति श्रद्धा निभाए श्रेय आत्मयात, राज्य तथा प्रकृति मर गया होता है। राजा अपने प्रकृति में पर आधारित है, प्रकृतियों पर आधारित होकर के सुख से रहता है। राजा कहां कहां पूरे देश में घूमेगा देखेगा, लेकिन उसकी जो प्रकृतियां होती है, उसके मंत्री और उसके अमात सेनापति दुर्ग कोष और भी उसके मित्र, इन पर अपना कार्यभार दे करके उनकी सहायता से वह कल्याण को प्राप्त करता है, वह श्रेय को प्राप्त करता है। राजा अकेले राजा कुछ नहीं कर सकता, उसके अपने इस तरह के लोग होते हैं सहायता देने वाले, और वे लोग राजा के आश्रित रह करके सुख से रहते। तो राजा का कल्याण है इन 7 पर निगाह रखना, इन पर आश्रित रहना, इन पर विश्वास करना, और उन 7 का कर्तव्य है कि वे राजा की शरण में रहें, राजा की आज्ञा का पालन करें। तो इनके कहने का आशय है कि आपके राज्य में कोई मंत्री कोई सेनापति आपके साथ बगावत तो नहीं किया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपसे असंतुष्ट है। राजाओं के पास बहुत खतरा रहता है, दूसरे लोग चाहते हैं कि हम राजा हो जाए, चाहे उसको मार करके या चाहे जनता का फेवर जीत करके जैसे तैसे हम राजा हो जाए, इसलिए राजा को बहुत खतरा रहता है, विष का खतरा रहता है, अस्त्र शस्त्र का खतरा रहता है। ये पूछ रहे हैं कि आप प्रकृतियों से संतुष्ट हैं ना और प्रकृतियां आपसे संतुष्ट हैं ना, अर्थात आपका राज्य का सब कुछ ठीक चल रहा है, पैसे की तो कमी नहीं है, कोष की कमी नहीं है, सेवकों को जथा समय वेतन दे देते हैं ना। ये राजा का कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों को ठीक टाइम से वेतन दे दे, ये राजनीति है, क्योंकि वे काम करते हैं तो परिवार चलाने के लिए काम करते हैं, 2 दिन भी अगर लेट करके दिया जाए पैसा तो उसे उनका काम बिगड़ता है, आखिर देना ही है तो टाइम पर दे देना चाहिए। ये कुशल मैनेजर का लक्षण, जब देना है तो दे दो समय पर, यदि थोड़ा ही देर किया जाएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो मान लीजिए घर में लड़कों की पढ़ाई के लिए जरूरत है, पत्नी के लिए जरूरत है उसको, या और कोई काम करना है उसी के लिए राजा का आश्रय लेकर के काम कर रहा है, अगर विलंब किया जाए वेतन में तो वो संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति। तो अंग्रेज पूछ रहे हैं कि सब लोग संतुष्ट हैं ना और आप इन पर विश्वास करते हैं ना। अब एक और बात पूछ रहे हैं, जबकि जानते हैं कि इनको एक भी पुत्र नहीं है, लेकिन कहते हैं अति दारा प्रजा मात्या भृत्या स्मृत मंत्र पौरा जान पदा भूता आत्मजा वसवर तुम। मैंने सुना है आपने बहुत विवाह किया है, सब स्त्रियां आपके वश में रहती हैं ना, और वो सारी वश में तो रहती ही थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सबके विषय कुछ है, सब आपके कंट्रोल में रहते ही, एक को कंट्रोल में करना कठिन होता है, आपकी तो 1 करोड़ है, कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सुनने लायक बात है। इस संसार में एक स्त्री को ही कंट्रोल कर लेने वाला वीर माना जाता है, बहुत भारी वीर होता है। तो ज्यादातर तो स्त्रियां ही कंट्रोल करती हैं पति को। रामायण में लिखा गया जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे स्त्री नचाती है अपने पति को, जो हुक्म कर दे वही होता है। लेकिन अंग्रेज पूछ रहे हैं कि 12 प्रजा मात्या भृत्या आपकी सभी पत्नियां आपके वश में है ना, और प्रजा आपके शिक्षा के अनुसार कार्य करती है ना आपके वश में है, और आपके अमात्य कार्य सहायक सचिव आपके वश में है ना, भृत्या आपके भृत्य सेवक सब आपके वश में है ना, श्रेणीगत और वणिक समुदाय और लोग, जैसे उसमें दैनिक श्रेणी का अर्थ होता है नाई धोबी दैनिक समुदाय पान लगाने वाला क्या कहते हैं तांबूली माली वगैरह, ये सब आपके वश में है ना, और मंत्री लग और ब्राह्मण आदि भी जो आपको मंत्रणा देते हैं ये सब आपके अधीन तो है ना, पौरा आपके राजधानी में रहने वाले पूर्व में रहने वाले जितने लोग हैं सब आपके वश में है ना, जानकवा और भिन्न भिन्न मंडलों के अधिपति जैसे गवर्नर आदि सब आपके वश में है ना, और भूपा और भी राजा पृथ्वी के सब आपके वश में है, राष्ट्र में पूछते हैं आत्मजा है 10,000 के ना, आपके सभी पुत्र आपके वश में है ना, ये सुनकर के तो राजा को हुक लग गया होगा एक भी है ही नहीं वश में रहने का। लेकिन अंग्रेज बहुवचन बोल रहे हैं, आत्मजा आपके देह से उत्पन्न, आत्मा देह को भी कहा जाता है, इसलिए आत्मज का अर्थ होता है देहज, वो पुत्र जो है वास्तव में पति का माना जाता है क्योंकि पति के वीर से उत्पन्न होता है, इसीलिए पति के देह से ही उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है, इसको आत्मज कहते हैं। तो आपके सभी पुत्र आपके अनुगामी हैं ना, आपको फॉलो करते हैं, ये ऋषि लोग भी बहुत मजाक करते हैं, मुझको देखो सर्वज्ञ है सब जानते हैं लेकिन इस तरह पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं सिद्धांत कहते हैं अंगुरा जी, जस्यात्मा ने विशेष चित सह सर्वे तस् बस गाई में, वास्तविक बात यह है राजा कि जिस व्यक्ति का मन वश में हो, जो अपने मन को अपने वश में रखा है उसके लिए सब लोग उसके वश में हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ तुम्हारा मन अपने वश में है कि नहीं, ये पहला प्रश्न है। तुम्हारा मन तो वश में है नहीं, चिंतन कर रहा है पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए ये चाहिए, अंग्रेज एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, कहते सब आपके वश में है ना, फिर कहते हैं वास्तव में जो व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल कर चुका है वश में कर चुका है उसी के वश में सब होते हैं, इसका अर्थ है तुम्हारे वश में कोई है नहीं क्योंकि तुम्हारा मन वश में नहीं है। जब अपने हृदय में रहने वाले मन को वश में नहीं रखे हो तो क्या किसको वश में रखो, किसको कमांड में रखो, एक सिद्धांत बता रहे हैं, जस्य आत्मा वशश्चित सर्वे तद वश गाय में लोका सकाल अजंति सर्वे बलि न संदे, जिस व्यक्ति का मन वश में होता है उसके मंत्री उसकी पत्नी उसके भूत नौकर चाकर राज और दूसरे राजा भी वश में रहते हैं और सभी लोग उसको उपहार देते हैं, सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो व्यक्ति जितेंद्रिय है अपने मन को अपने वश में कर चुका है तभी तो राजा को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, ये पूछ करके रुकते होंगे तो बेचारा शोक के मारे बोल नहीं पाता होगा, उसको पुत्र की इतनी लालसा थी कि उसकी बोली नहीं निकल गई तो क्या था। तो अंग्रेज और पूछते जाते हैं, अंत में उन्होंने पूछा आत्मने प्रियते नात्मा परते सोते लक्ष्य अलभ कामम त्वाम चिंत सबलम मुखम, राजन मैं देख रहा हूं कि तुम प्रसन्न नहीं हो, आत्मना प्रियते नात्मा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें अपने आत्मा से मन से प्रसन्न नहीं हो। अब इसमें तुम स्वयं कारण हो कि दूसरा कोई कारण है वह बताओ। कोई दूसरा कारण नहीं था, ये अपने आप कारण था। अपने मन में पुत्र के अभाव के अभाव को लेकर के मन में बैठा करके रो रहे थे हमको, ये नहीं है वो नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं था। लेकिन अंग्रेजी पूछ रहा है परतः स्वतः एवं, तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, तुम्हारा मन वश में नहीं है, तुम दुख का अनुभव कर रहे हो, तो दूसरा कोई ऐसा किया है कि तुम स्वयं इस तरह से दुख में पड़े हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई कोई गाली दे दिया है, कोई धन छीन लिया है, या कुछ हो गया है इसलिए दुखी हो कि अपने आप मन में कल्पना करके दुखी हो? तो मान लीजिए चित्रकृति पूछे कैसे आप जान गए कि मैं दुखी हूं, तब कहते हैं लक्ष्य अलभ्य काम उनका चिंता सबलम मुखा। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी कोई कामना है जो पूरी नहीं हुई है, उसी से तुम्हारा सबलम मुखा, तुम्हारा जो मुख है वो आधा से शून्य है, उस पर कोई सुख की किरण नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई सुखानुभूति का लक्षण नहीं दिख रहा है, तुम दुख में हो, किसी चिंता में हो। क्या चिंता है ये पूछ रहे, कृपा करने के लिए पूछ रहे हैं, बताओ किस चिंता में डूबे हो। मैं लक्ष्य मैं समझ रहा हूं, ये नहीं कहते मैं हृदय कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे हतप्रभ है मुखमंडल को देख करके मैं तुम्हारे हृदय की बात को समझ रहा हूं कि कुछ न कुछ तुम चिंता में पड़े। तो कोई आदमी कितना भी छिपाए लेकिन हृदय में जब चिंता होती है तो वास्तव में चेहरा मलिन हो जाता है, चेहरा बताता है कि कोई न कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है। तो बताओ तुमको क्या दुख है। एवं विकल्पित राजन विदुषा मुनिना की सहा प्रश्रयावनतोभ्या प्रजा कामस्त को मुनि। इस प्रकार से मुनि ने बहुत वैकल्पिक प्रश्न किया, तुम्हारा ये ठीक है, तुम्हारा ये ठीक है, किस लिए दुखी हो, ये हो, बहुत बात पूछे। क्योंकि विदुषा मुनि ने यदि ये जानते थे, विदुषा का विद्वता वो विद्वान थे, सब जानते थे, हृदय की एक एक बात को संकल्प तक वो जानते थे, ये पता था कि राजा चित्रकेतु क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना शोक में है, लेकिन फिर भी जान बुझ करके भी इस तरह से पूछे। तो प्रजा काम, जिस व्यक्ति के हृदय में पुत्र की लालसा बनी हुई थी, वह राजा मुनि से इस प्रकार बोला। अब उसको विश्वास हो गया कि ये बहुत बड़े ऋषि हैं, कि इनके सामने रोऊंगा गाऊंगा तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। बड़े भाग्य से ब्रह्मलोक से अंगिरा जी आए थे। तो चित्रकेतु कहते हैं भगवान किं न विदितं तपो ज्ञान समाधि योगिनां ध्वस्त पापानां बहिरंता शरीरसु। हे सर्वज्ञ, हे भगवान, आप जैसे योगियों के लिए क्या अविदित है, क्या अज्ञात है, आपको क्या मालूम नहीं है? आप लोग तप ज्ञान और समाधि के द्वारा प्राणियों के बाहर और भीतर की सारी बातों को जानते हैं, आप अवश्य हमारे भीतर की बात को जानते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? आपको मालूम है। महाराज चित्रकेतु को यह विश्वास था कि इस प्रकार के अर्थात अंगिरा जैसे ऋषि प्राणियों के भीतर बाहर की सभी बातें जानते हैं। तो कहते हैं आपको क्या अविदित है, अर्थात सब कुछ विदित है, योगी नाम ध्वस्त पापा नाम। आप कैसे योगियों के सारे पाप सारे कलमश भूल जाते हैं, इस कारण से वे शरीरधारियों के बहिरंत बाहर और अंत सब प्रकार की बात को जानते हैं। बाहर क्या किया है कर रहा है इसको भी जान जाते हैं, और भीतर क्या सोच रहा है क्या संकल्प कर रहा है ये भी सब जान जाते हैं। तथापि पृछते गुरुवान ब्रह्मन आत्मनि चिंतितम्। फिर भी जब आप पूछ रहे हैं, एक प्रकार से आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कुछ बोलने के लिए, मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, फिर भी जब आप आज्ञा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं अपना शोक बता रहा हूं, मैं अपनी चिंता बता रहा हूं। भौतिक दृश्य चापी चोर कष्ट बनी गया। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कहने के लिए कि आपकी अनुज्ञा से, आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो पहले तो अपनी पूर्णता बताए कि हमारे पास क्या क्या है, बता रहे। लोकपाल अपूर्थ साम्राज्य ऐश्वर्य संपदा, मेरे पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्तियां हैं कि इंद्रादि लोकपालों के पास भी इतना धन नहीं है। पहले अपना परिचय दे रहे हैं तो वो उन्होंने पूछा कि सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई रुपये पैसे की कमी हो गई है, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी सफाई दे रहे हैं। पहले जो समाचार पूछा था आंध्रा जी ने, तो उसका उत्तर दे रहा है। लोकपालों के पास भी जो धन संपत्ति नहीं है, वे लोग भी जिस धन संपत्ति साम्राज्य की कामना करते हैं, वह सब मेरे पास है। परंतु ये सब धन संपत्ति और स्वर्ग मिल करके भी नन नंदयंती और प्रजन मा छुटीर काम लिया कर, लेकिन ये सारी संपत्तियां सारे ऐश्वर्य भी मुझको सुखी नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे सुख नहीं दे रहे हैं। क्यों? अप्रजन। मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख है कि मैं पुत्रहीन हूं, मुझे कोई संतान नहीं, तो ये सब मुझको सुख नहीं दे रहे। लोग दृष्टांत दे रहे हैं किस तरह से सुख नहीं दे रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति को खूब भूख लगी हो, प्यास लगी हो कई दिन से, और वह भोजन भोजन रख रहा हो, पानी 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 चाहता हो, पानी चाहता हो, तो उस समय छुटपुट काम लिया करे। यदि भूख से व्याकुल और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को दूसरी वस्तुएं दी जाए तो वह कभी भी इन वस्तुओं से सुखी नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास बहुत संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र की मुझे कामना है, अतः मुझे दूसरी वस्तुओं से कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो किसी व्यक्ति को खूब भूख लगी है, प्यास लगी है, और उसको आप 10,000 रूपये की नाला ले जाकर के पहनाइए कि पहनो, बहुत महंगी नाला पहना रहा है, तो निकाल के फेंक देगा, जाए चाहे उनको पानी दो, लस्सी दो, चाहे कुछ दो, मैं जी कुछ खाने के लिए मांगेगा, है कि नहीं? वो कहे नहीं नहीं, हम तुमको माला पहना रहे हैं। कोई कहे इसको नक्श सिख तक चंदन करने को करो, ये शीतल होगा, शीतल नहीं होगा, मर जाएगा बेचारा। जैसे भूख पाए प्यास से व्याकुल व्यक्ति को माला और चंदन स्त्री आदि सुखी नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से मुझको सम्राज धान पद कुछ भी सुख नहीं दे सकता है, हमको ये कहीं सुख दे सकता है, हमको बेटा हो जाए बस, इस तरह की बात कर। नन नंदयंती अप्रजन नाम, नन नंदयंती मतलब न आनंदयंती, हमको ये आनंद नहीं दे रहा, हमको किसी भी वस्तु से सुख नहीं मिल रहा है। सुदृढ़ काम लिया जब से पानी चाहता है, भोजन चाहता है, व्याकुल है, तो उसको अपरे न नंदयंती, अन्य वस्तुएं उसको सुख नहीं दे सकती। किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल है, पानी के बिना छटपटा रहा है, उसको कहिए कि चलो मैं सोने के झूले पर तुमको झूला दू, ठीक है, यह कहिए कि मैं तुमको सबसे महंगा रेशमी कपड़ा पहना दू, मैं चिंता मत करो, उस समय उसको कुछ भी नहीं सुहाएगा, बल्कि मग में रहने दो, गमछा पहन करके रहने दो, लेकिन खिलाओ, वो ये कहे हमको कपड़े की जरूरत नहीं, ऐसा कहे। जिसको इसका अनुभव होगा व्यक्ति जान सकता है कभी भूख लगने पर, इधर तो एकादशी को भी खाने को मिल जाता है, तो क्या किया जाए, भूख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन कभी न कभी होता है सबको, कभी न कभी ऐसा होता है, भूख प्यास लगने पर अन्न और जल की कामना होती है। उसी तरह से मेरे जीवन में बस मुझे पुत्र चाहिए, और हाथ से हमको कोई सुख नहीं है। तो अंग्रेज थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे, तो इसके बाद नारद चित्रकेतु कहते हैं, ततः पाहि महाभाग पूर्व सह गतम तमा जथा तरेन दुस्तारम प्रजया तद विधे ही न। हमने सुना है कि जिस व्यक्ति को पुत्र नहीं होता है तो उसके पूर्वज नरक में गिर जाते हैं, वह अभी नरक में जाता है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमको पुत्र दीजिए जिससे मैं अपने पूर्वजों को नरक से निकाल सकूं और मैं भी नरक में न गिर सकूं। तो इस जीवन में तो मैं मर ही रहा हूं, बाद में नरक में भी गिरना पड़ेगा। इसलिए आप कहता कि जो हमको पुत्र दीजिए, जथा तरेन दुष्कारम प्रजया तब विधेय। वास्तव में शास्त्र कहता है कि पुत्र नरक से तार देता है, पुत्र नामक नरक से तारता है, इसीलिए संतान को पुत्र कहते हैं। तो शास्त्रों की बात है, तुम्हारा चित्रकेतु ये सब जानते थे कि पुत्र होगा तब पूर्वज नरक से निकल जाएंगे। मैं संतान ही नहीं, इसलिए हमारे बाप दादा भी सब नरक में गिरे होंगे। ऐसा होता नहीं है वास्तव में। यह तो इसलिए शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अपनी विवाहिता पत्नी से शुद्ध संतान उत्पन्न करे, इसके लिए कह दिया जाता है। धर्मपूर्वक विवाह करके यदि व्यक्ति अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है तो इस कारण से उसको बहुत स्वीकृत मिलता है। परंतु नरक में गिरना या उबरना ये अपने कर्म का फल होता है। अभी सूत्र के तो महाराज पुत्र के लिए शोक कर रहे हैं, ये पुत्र प्राप्त करेंगे नहीं, एक बार कर करेंगे मर जाएगा, इसलिए छोड़ छाड़ कर घर चले गए और तब सुखी हो जाए। ये कथा है आगे। तो इस बात को ये मान रहे हैं, ये स्मार्ट मत है, शास्त्रों के पूर्व मीमांसा में बात कही गई है, पुत्र न हो तो पूर्वज गिर जाते हैं नरक में, यह बात नहीं है, यह सत्य नहीं। हाँ, यह बात जरूर है कि धर्म पुत्र उत्पन्न नहीं किया और स्वयं पाप भी करता गया, तो उसको पिंड दान करने वाला, उसके लिए शुभ कर्म करने वाला, भागवत आदि कराने वाला कोई पुत्र नहीं रहे तो नरक में गिरेगा। तो पुत्र एक सहारा होता है, जो पिता से कुछ गलती हो गई है तो बाद में पुत्र कुछ ऐसा शुभ कर्म करता है जिससे कि पिता की सदगति होती है। ये सत्य, जैसे अपने पापों के कारण हिरण्यकश्यपु नरक में गिर सकता था, लेकिन प्रहलाद जी के शुभ कर्मों से, भगवत भक्ति से, कृष्ण भावना से वह तर गया। प्रहलाद महाराज ने नृसिंह भगवान से अपनी चिंता को व्यक्त भी किया, हे प्रभो मेरे पिताजी आपके साथ गैर किए, आपकी बहुत निंदा करते रहते थे और मैं आपका भक्त था इसलिए मुझको ही सताते थे। आप यदि वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उनकी दुर्गति न हो। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम इसकी क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी तो बात ही क्या है, कोई तुम्हारे जैसा दूसरा भी भक्त है तो उसके 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं, तुम्हारा पिता तो तुम्हारी दूसरी ही पीढ़ी में है, चिंता मत करो, मैं अपने हाथ से उसका दर्द किया हूं, मेरे अंगों का स्पर्श हुआ है, तो वह तो तर गया और तुम्हारे भक्ति के कारण तर गया। भगवान ये बात कहे, तुम भक्ति की हो तो तर गया। तो देखा जा रहा था कि हिरण्यकश्यपु वास्तव में अधोगति में जा सकता था, लेकिन श्री प्रहलाद महाराज के भक्ति से उतर गया, बेन को ऋषियों ने सांप देकर के मार डाला था, हुंकार से मार डाला था और उसका नरक में गिरना बिल्कुल निश्चित था। लेकिन पृथ्वी महाराज पुत्र के रूप में जन्म लिए बाहों से, तो पृथ्वी महाराज के शुभ कर्म से बेन नरक में नहीं गिरा, ये कथा नरक में नहीं गिर पाया। उतना भगवान का निंदा करने वाला, साधुओं को सताने वाला, यज्ञ आदि बंद करा दिया, भजन बंद करा दिया, नरक में गिरना निश्चित है, लेकिन पृथ्वी महाराज के द्वारा तार दिया गया। महाराज सगर के पुत्र 60,000 वही सब भस्म हो चुके थे भगवान का अपराध करके, लेकिन उनके वंश में भगीरथ जी हुए बाद में, जिन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों को तार दिया, क्या करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ला करके, न प्रयास किया। तो पुत्र इसलिए आवश्यक होता है। ये सब बातें हैं शास्त्र में, लेकिन मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, पुत्र आदि के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जप कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, वो तो अपने शुभ कर्मों से भगवान के पास जाएगा, उसे पुत्र पर डिपेंड।